नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ अपूर्वा मंधानी की रिपोर्ट, जिसमें वो नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के कुछ गांवों के हाल के बारे में बता रही हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए पिछले हफ्ते दिल्ली से निकली तो मैं राजनेताओं और ज़मीनी राजनीति की हकीकत को समझने के लिए तैयार थी। जिस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं थी वो था मगरमच्छों से भरे पानी में यात्रा करना और मुख्य जंगली इलाके में सवारी करते हुए गुजरना। हम लखनऊ में थे जब द प्रिंट के नेशनल फोटो एडिटर प्रवीण जैन और मैंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित उन गांवों के बारे में सुना जहां केवल नाव और कतरनिया घाट जंगल से होकर जाने वाले रास्तों से होकर ही पहुँचा जा सकता था। हमने सुना है कि इनमें से कुछ गाँव में कभी मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। हमने निश्चित कर लिया था कि हम इन गांवों को अब और इंतज़ार नहीं कराएंगे और इसलिए हमने इन गांवों का सफ़र करने का फैसला किया। इस बात से अनजान कि आगे इसमें क्या चुनौतियां आने वाली हैं, पत्रकार के रूप में हम इसे खुद देखना चाहते थे। हम 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे बहराइच के लिए निकले और जैसे ही कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास पहुँचे हमारा मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी। हमने गिरवा नदी के तट पर एक छोटी सी जगह पर अपना रास्ता बनाया जहां हमें बताया गया कि हमें एक नाव की प्रतीक्षा करनी होगी जो हमें उस पार ले जाएगी। प्रवीण और मैं दोनों अपने शूटिंग उपकरणों से लदी इस नाव पर चढ़े। इन गांव के निवासियों के साथ साथ सामान भी ले जाया जा रहा था। ध्यान रखें, हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता था। हम ये बात जानते थे कि किसी भी स्थिति में अगर यह नाव पलट गई तो नदी में रहने वाले मगरमच्छों से हम नहीं बच पाएंगे। हम दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, लेकिन साथ ही अपने आसपास का भी ध्यान रख रहे थे। जो एक संकरा सा हिस्सा लग रहा था वो जल्द ही दोपहर की धूप में चमकते हुए नदी के विशाल पानी में बदल गया। किनारे पर पहुँचने के बाद हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमें बताया गया कि भरथापुर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस बार हमें घने कतरनिया घाट जंगल के माध्यम से होकर जाना पड़ा जहां साल और सागौन के जंगल, हरे भरे घास के मैदान, दलदल और आर्द्र भूमि हैं जो घड़ियालों, बाघ, गैंडे और हाथियों का घर हैं। हमने आसपास पूछा और गिरवा नदी के किनारे स्थित सशस्त्र सीमा बल शिविर से मदद मांगी, क्योंकि ये इलाका हम दोनों को बेहद खतरनाक और अजनबी लगा। चारों ओर सुंदर हरियाली थी, लेकिन रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। समय हमारे हाथ से फिसला जा रहा था क्योंकि हमें सूर्यास्त से पहले वापस लौटना था, जबकि जंगल की सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब हम अंता भरथापुर पहुँचे तो हमने फूस की छतों वाले घर देखे। उस गांव में एकमात्र पक्का मकान था, वो था प्राइमरी स्कूल। ग्रामीण जिनके पास अक्सर बाहर से कोई नहीं आता, शुरू में हमें देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, और जैसे ही हमने बताया कि हम पत्रकार हैं वे खुलकर हमसे बोलने लगे। अपने जीवन जीने का तरीका दिखाने के लिए पूरा गांव हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गया। 80 साल की कलावती की आंखों में आंसू थे। अपने स्थानीय भाषा में उन्होंने हमें बताया कि कैसे गांव वाले दुखों से परेशान हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी, सबसे बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। गाँव के घरों पर लगाए गए छोटे छोटे सोलर पैनलों से उनका काम चलता है। उन्होंने हमें बताया कि कैसे गांव में एक स्कूल तो है, लेकिन जंगल में जानवरों का सामना होने जाने पर शिक्षक अक्सर नहीं आते हैं। उन्होंने उन घटनाओं के बारे में भी बताया जब जंगली जानवरों ने उनके भाइयों को मार डाला था। उन्होंने हमें बताया कि कैसे नेता उनके गांव नहीं आते और कैसे उन्हें उनसे कभी कभार ही कोई मदद मिलती है। उन्होंने हमें बताया कि कैसे बीमार लोग जंगल और पानी के रास्ते अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मर जाते हैं, जो 50 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। ये पता था कि उनकी कहानियां कमज़ोर दिल वाले नहीं सुन सकते और उनके दर्द को सुनने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उनका दर्द सुनते सुनते हमें समय का ध्यान नहीं रह गया और हमें पता ही नहीं चला कि किस वक्त सूर्यास्त हो गया है। हम दोनों कलावती और गांव के बाकी लोगों की कहानियां सुनने के बाद फिर से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जंगल से वापसी की यात्रा अंधेरे में करना और भी कठिनाई भरा था। पत्तों की हर सरसराहट हमें अंदर तक कंपा देती थी। नदी पार करते वक्त नाविक रात के घुप अंधेरे में टॉर्च के सहारे नाव को आगे ले जा रहा था। प्रवीण और मैं दोनों उस रात मुश्किल से सो सके। हमारे फ़ोन में अभी भी ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा था। हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। हम तो वहाँ से चले आए थे, लेकिन हमारा मन अभी भी भरथापुर में ही था। अगले दिन हमारा मिशन भारत नेपाल सीमा पर स्थित चार और गांव में जाना था। हमने कहानियाँ सुनी थीं कि कैसे इन गाँव में कभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, और ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि यदि अधिकारियों ने अब कार्रवाई नहीं की तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इन गांव का रास्ता भी कतरनिया घाट जंगल से होकर जाता है। जब हम इन गांव से कुछ सौ मीटर दूर थे तब हमें पता चला कि एक भारी भरकम पेड़ की मोटी डाल के टूट कर गिरने से रास्ता बंद हो गया है। जंगल हमें उन कठिनाइयों की एक झलक दे रहा था जिनका सामना ये ग्रामीण हर दिन करते हैं। हमें यह भी बताया गया कि अब किसी को सीधे तौर पर अधिकारियों से रास्ता साफ करने के लिए कहना होगा, क्योंकि मैसेज या कॉल के ज़रिए इसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। इन गांव के अंदर हर दीवार पर नो टावर, नो पावर और नो नेटवर्क, नो वोट जैसे नारे लिखे हुए थे। हालांकि इन गांवों का इलाका भौगोलिक रूप से भरथापुर जैसा कठिन नहीं था, फिर भी वे बाहरी दुनिया से कटे हुए थे और मोबाइल नेटवर्क, टावर न होने के कारण सबसे बुनियादी संसाधनों तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक ग्रामीण ने हमें यह भी बताया कि अगर उस समय प्रवीण या मुझे कुछ हो जाता तो उन्हें नहीं पता था कि वे हमारी कोई सहायता कर पाते या नहीं। आप कल्पना कीजिए कि हमें उस वक्त कितना आश्चर्य हुआ होगा जब हमें पता चला कि उन्हें भारत की तुलना में नेपाली मोबाइल नेटवर्क से बेहतर सिग्नल मिलते हैं और इसलिए उनमें से कई भारत के बजाय नेपाली सिम का उपयोग करते हैं। इन ग्रामीणों ने हमें ऐसी कहानियां भी सुनाई जिससे पता चलता था कि बाकी देश से वे अपने आप को किस तरह से कटा हुआ महसूस करते हैं। वे विकास और बाहरी दुनिया से जुड़ाव के भूखे थे, अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ते देखने के भूखे थे। एक बहुत ही बुनियादी मांग पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों ने गांव के पास BSNL का एक टावर लगाया, जिससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क की उनकी मांग जारी रहेगी। चूंकि ये गांव सीमा के बहुत करीब थे इसलिए हमें कतरनिया घाट जंगल के पास भारत नेपाल सीमा का भी दौरा किया। सीख ये थी कि जब आप सीमाओं को करीब से देखते हैं तो वे वास्तव में धुंधली हो जाती हैं। हमारी दो दिन की यात्रा घाघरा बैराज के पास समाप्त हुई, जहाँ हमने पारंपरिक रूप से मशहूर बाटी की तरह का ही एक व्यंजन घाटी खाया। जब हम सत्तू भरे इस गोल गोल व्यंजन का आनंद ले रहे थे तभी एक बंदर मेरी प्लेट की तरफ झपटा और एक घाटी चुरा ले गया। चूँकि दो दिन के बाद फ़ोन में नेटवर्क आने की वजह से मैं फ़ोन को स्क्रॉल करने में व्यस्त थी। सुनने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे दीपन सुप्रभात के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।